नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने उन्हें ईद की अग्रिम शुभकामनाएं दी और पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने यूएई पर हुए सभी हमलों की कड़ी निंदा की। दोनों नेताओं ने होर्मुज जलडमरो मध्य में सुरक्षित और निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करने के महत्व पर सहमति जताई। ईरान ने पुष्टि की है कि रक्षा प्रमुख अली लारिजानी और बासिस फोर्स के प्रमुख गुलाम रजा सुलेमानी की इसराइली हमले में मौत हो गई है। लारिजानी को अमरीका और इसराइल के खिलाफ जारी संघर्ष में तेहरान के शीर्ष नेताओं में गिना जाता था और वे सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई और उनके बेटे मुज्तबा के करीबी माने जाते थे। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि आज तड़के ईरान की कई मिसाइलों और ड्रोन को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया गया। हालांकि दुबई में विस्फोट की तेज आवाजें सुनी गईं। एहतियात के तौर पर राष्ट्रव्यापी दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम को 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। अधिकारियों ने नागरिकों से कहा है कि चेतावनी मिलने पर वे सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। निर्वाचन आयोग ने असम, केरलम, पुदुच्चेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव और अन्य 6 राज्यों में उपचुनाव के लिए 1111 केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने दोहराया है कि मतदान प्रक्रिया स्वतंत्र, निष्पक्ष और हिंसा मुक्त होगी, जिससे प्रत्येक मतदाता निर्भय होकर मतदान कर सके। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
आयोग ने बताया ये अधिकारी चुनावी प्रक्रिया के सभी पहलुओं पर कड़ी निगरानी रखेंगे। सामान्य पर्यवेक्षक मतदान के समग्र संचालन की देखरेख करेंगे। पुलिस पर्यवेक्षक कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करेंगे, जबकि व्यय पर्यवेक्षक धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए चुनाव खर्च पर कड़ी निगरानी रखेंगे। पर्यवेक्षकों को आज तक अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचने और तुरंत अपना कार्यभार संभालने का निर्देश दिया गया है। ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
केरलम में तीनों प्रमुख राजनीतिक गठबंधनों द्वारा उम्मीदवारों की पहली सूची जारी किए जाने के बाद चुनाव अभियान तेज हो गया है। चुनाव प्रक्रियाओं की निगरानी के लिए विशेष पर्यवेक्षकों के आज राज्य में पहुंचने का कार्यक्रम है, जबकि व्यय पर्यवेक्षक पहले ही राज्य में पहुंच चुके हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 23 मार्च है। इससे पहले एलडीएफ और एनडीए ने अपनी पहली सूचियां जारी कर दी थी। कल शाम यूडीएफ के प्रमुख घटक दल कांग्रेस ने 55 उम्मीदवारों की सूची जारी की। विपक्ष के नेता वीडी सतीशन एक बार फिर परवूर सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं सीपीआईएम ने रविवार को जारी अपनी सूची में मुख्यमंत्री पिनरई विजयन समेत 56 मौजूदा विधायकों को मैदान में उतारा है। भाजपा ने सोमवार को 47 उम्मीदवारों की सूची जारी की। स्मृति एस लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
लोकसभा में आज कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के वित्त वर्ष 2026-27 की अनुदान मांगों पर चर्चा के बाद मतदान होगा। सदन में गृह, विदेश और विद्युत मंत्रालय के अनुदान मांगों पर भी चर्चा और मतदान होना निर्धारित है। इस बीच संसद ने विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने कल हुई चर्चा के बाद इसे लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा पहले ही इसे मंजूरी दे चुकी है। देश में बढ़ती गर्मी के मद्देनजर राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र एनसीडीसी ने नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। एनसीडीसी ने सलाह दी है कि तेज गर्मी के दौरान लू लगने से बचने के लिए खूब पानी पिएं और भारी काम करने से बचें। इसके साथ ही हल्के रंग के कपड़े पहनें। भारत जनजाति महोत्सव आज से दिल्ली में शुरू हो रहा है। इस महोत्सव में आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक विरासत और उद्यमिता को प्रदर्शित किया जाएगा। इसका आयोजन भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ द्वारा सुंदर नर्सरी में किया जा रहा है। ये महोत्सव 30 मार्च तक चलेगा। उधर सिक्किम के बरदांग में आज सिक्किम प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया जाएगा। ऑरलियंस मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कल भारत के आकर्षि कश्यप ने अपने दोनों क्वालिफाइंग मैच जीतकर महिला सिंगल्स के मुख्य ड्रॉ में प्रवेश किया। इसके बाद आकर्षि ने चीनी ताइपे की ली यू हसुआन को हराया। किदाम्बी श्रीकांत, आयुष शेट्टी, मालविका बंसोड आज बीडब्ल्यूएफ सुपर 300 टूर्नामेंट में अपना अभियान शुरू करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।